نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى اله آج اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہم لوگوں میں سے لوگ پریشان بہت نظر آتے ہیں, تو چاہے وہ امیر ہو غریب ہو کاروباری ہو نوکری پیشہ ہو کوئی بھی انسان ہو, تو راحت اور دنیاوی اسباب ہونے کے باوجود اکثر لوگ پریشان نظر آتے ہیں. ایسے ایسے لوگ پریشان نظر آئے جو کروڑوں پتی ارب پتی بھی ہیں لیکن پریشانیاں ان کا ساتھ نہیں ان کا ساتھ دے رہی, یعنی ان کو جو پریشانی ان کا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی, مصیبتوں میں بلاؤں میں پریشانی دنیا کی نعمتیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے جی پھر غریب آدمی پریشان ہے, غریب اپنے حساب سے پریشان ہیں اور جو امیر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے حساب سے اپنے معاملات کے حساب سے پریشان ہیں. تو چین سے بہت کم لوگ ہیں سکون کے ساتھ عافیت کے ساتھ, اس لیے عافیت کی اہمیت بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. تو اب 100% تو بھائی جنت جیسا ماحول ہمیں دنیا میں نہیں مل سکتا, کیونکہ یہ بھی قرآن حدیث میں ہے کہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے, جو جتنا تکلیف میں اور آزمائشوں میں پریشانیوں میں مبتلا رہے گا اتنا اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا. دنیا کی تکلیفوں کا پھر ہمیں معاوضہ کیا ملے گا کہ جنت, اور دنیا میں جو جتنا زیادہ عیاشی میں رہتا ہے گناہوں میں رہتا ہے اتنا زیادہ پھر جنت سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں شب معراج میں گیا تھا اور اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا تھا تو میں نے جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگوں کو دیکھا, مجبور بے کس مفلس نادار غریب لوگ کثرت سے نظر آئے, اور جہنم کا جب میں نے مشاہدہ کیا تو اس میں بکثرت کثرت کے ساتھ مجھے دولت مند لوگ نظر آئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی کہ دولت جب آتی ہے پیسہ آتا ہے تو سرکشی کے ساتھ آتا ہے, اکثر نافرمانی کے ساتھ آتا ہے, حرام کی وجہ سے آتا ہے, حلال پیسوں سے بہت کم لوگ کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں. تو زیادہ تر جو دولت جو آتی ہے وہ جب تک مکسنگ حرام کی نہ کی جائے تو بڑا انسان بنتا نہیں ہے دنیاوی طور پر, پیسے کا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حلال سے کہیں پہنچ جائیں. اور دوسری بات ہے جب اکثر جب مال و دولت آ جاتی ہے تو اکثر جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں سب نہیں لیکن اکثر کا بہت برا حال ہے, تو جو جتنا دولت مند اتنا بڑا دین کا مخالف, اتنا تکبر, اتنا دین کی نشانیوں کا احکامات کا مذاق اڑانے والا ہے اعتراض کرنے والا ملے گا. یہ مرض غریبوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن امیروں میں بہت ہی, کیونکہ وہ پیسہ کیا جاتا ہے تو جیتے جی بہت سے لوگ اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے وہ خدا سمجھنے لگتے ہیں, چاہتے ہیں ہر چیز سب کچھ ہمارے حساب سے. تو اس لیے آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم میں کثرت کے ساتھ میں نے دولت مندوں کو دیکھا تھا اور عورتوں کو, جہنم بھری ہوئی تھی دولت مندوں سے اور عورتوں سے, اور عورتوں سے کیوں بھری ہوئی تھی, عورتوں نے جب یہ بات سنی تو بہت غمزدہ ہوئی پریشان, انہوں نے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا قصور ہے. فرمایا دو گناہوں کی وجہ سے عورت کثرت سے جہنم میں جائیں گی, ایک تو اپنے شوہر کی ناشکری ہوں گی, کتنے ہی اچھے شوہر مل جائے کتنے ہی خیال کرنے والا مل جائے ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے بس اٹھا کے پٹک دیں گے ارے اس مردوے نے دیا ہی کیا ہے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے, ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے بس تانے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں ناشکرے پن کی وجہ سے, شوہروں کی ناشکری ہوگی. دوسری جب بیٹھیں گی غیبت کریں گی, عورتیں جب آپس میں بیٹھیں گی سب نہیں سب عورتیں اس لیے اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ جب بیٹھیں گی غیبت ضرور کریں گے, ارے تمہیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی, وہ تو اتنا اترا رہی تھی ایسے بن بن کے بول رہی تھی, ارے ہاں واقعی میں بھی دیکھ رہی تھی, اب وہ شروع کہانی. تو عورتیں جہاں بیٹھ جائیں وہاں غیبت کا بغار گرم ہو جاتا ہے. تو اس لیے کثرت سے جہنم میں عورتیں آپ نے فرمایا ہوں گی ان دو گناہوں کی وجہ سے. پہلے سے پہلے کیوں بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے چیز کیوں دکھائی تھی تاکہ عورتیں احتیاط کریں دو گناہوں سے, لیکن اللہ ماشاء اللہ لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہوگی کہ اتنی پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود احتیاطیں کریں خواتین, ورنہ یہ حدیث شریف اکثر سنتی رہتی ہیں خواتین لیکن اثر کچھ نہیں ہوتا, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. غیبت سے کون بچتا ہے, بچ رہا ہے آج. حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے اچھے اچھے خواص میں بھی غیبتیں چلتی ہیں, اب تو خواص لوگوں میں جو خاص لوگ ہوتے ہیں دیندار उनमें भी गीबतों का बाजार गर्म है। गीबत की कोई कंडीशंस होती हैं, वजूहात होती हैं, वो है कुछ शराइत के साथ गीबत है, एहसन है, अफजल है, अकमल है, सवाब है उस गीबत पे, वो एक अलग है। लेकिन हमारे जो होती है गीबत, वो बाज़ अक्सर जो गीबतें होती हैं वो नफसानी ख्वाहिशात के ताबे होती हैं, कोई उसका मकसद नहीं होता, बल्कि वो नफ्स की ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं, ऐसी कोई मकसद नहीं होता, तो उनको कोई मकसद नहीं होता वो गीबतें करने का। तो ये चीज़ होती है। तो कसरत के साथ दौलतमंद जहन्नम में नज़र आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बताने का क्या मकसद है कि दौलतमंद जो है वो भी अपनी फ़िक्र करें, अपनी इसलाह की फ़िक्र करें। ऐसा तो नहीं अगर दौलत आ गई है तो कोई फिरौनियत तो नहीं आ गई, अकड़ तो नहीं आ गई, तकब्बुर तो नहीं आ गया, लोगों की हकारत तो नहीं आ रही, दिमाग ख़राब तो नहीं हो गए। तो ये बताने का ये मकसद है आप सल्लम ने जो बात फरमाई थी कि एहतियात करें दौलतमंद लोग, कि भाई फ़िक्र की बात है मतलब ये। हाँ, जो मुत्तकी आदमी है उसके लिए दौलतमंद होना कोई परेशानी की तकलीफ की बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मनकूल एक हदीस पाक के, मुत्तकी आदमी यानी जो गुनाहों से बचने वाला अल्लाह वाला आदमी होता है उसके लिए मालदार होना, दौलतमंद होना कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई डर की फिक्र की बात नहीं। क्योंकि जब वो क्योंकि किसी अल्लाह वाले को दौलत आएगी, अमीर हो जाएगा वो, तो उसका पैसा क्या LCD पे खर्च होगा कि घर वालों को LCD दिखाएगा वो 50 इंच की? क्या वो केबल के पैसे देगा? क्या करेगा वो? वो तो हराम काम से बचेगा, मस्जिदें बनवाएगा, मदरसे बनवाएगा, खानकाहें बनवाएगा, दीन के रास्ते पे माल खर्च करेगा, देखेगा कि मैं अपनी दौलत कहाँ ट्रांसफ़र करूँ दीन के शोबे में ताकि मेरी दुनिया और आखरत संवरे। तो अल्लाह वाला अमीर होगा तो वो तो सही जगह लगाएगा और हराम काम में कभी पैसा नहीं लगाएगा। आम आदमी जिसको बहुत पैसा आ जाएगा वो तो अपनी शादियों की बहन बेटियों की बच्चों की शादियों पर करोड़ों रुपये उड़ा देगा वो। तो आज हम देखते हैं, वही तो बता रहा हूँ, जो जितना दौलतमंद उतना बड़ा नाफरमान। बस नहीं चलता कि दुनिया को ख़रीद के फेंक दे। तो ये बेटे की शादी है, जायज़ नाजायज़ सारी भड़ा से निकाली जाती है और कहते हैं यार एक ही तो बेटा है या आखिरी तो शादी है। तो ज़्यादातर जुमला होता है यार पहली तो खुशी है घर की, मत रोको टोको। अगर आखिरी होती है तो कहते हैं यार सब तो होगा, आखिरी तो बच्ची बची है, इसमें तो खुशी मनाने दो। तो भाई ना पहली पे कोई छोड़ दो ना दूसरी पे, तो इसी तरह तो सिलसिला चलता जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह पाक ने किसी को दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, भाई तो सजदे से सर नहीं उठना चाहिए, आज ही आनी चाहिए। अल्लाह इतने लोग परेशान हैं, मुसीबत में, बलाओं में, परेशानियों में, अल्लाह पाक लोगों के कारोबार नहीं चल रहा और तू मुझे इतना नवाजे जा रहा है, कहाँ से कहाँ तूने पहुँचा दिया, मेरा माजी क्या था और अल्लाह तूने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। तो शुक्र में तो तकवा अख्तियार करना चाहिए, गुनाहों से बचे और अल्लाह की तरफ आए। ये क्या हो, और अल्लाह से फिर गए और उल्टे हो गए और दीन से फिर गए और मजाक उड़ा रहे हैं और शरीय अहकाम की धज्जियाँ बखेर रहे हैं, ये क्या है? ये तो बिल्कुल ही फिरौनियत शैतानियत है। अल्लाह चाहे तो एक झटके में सारी जो खाया पिया बाहर निकाल दे, सारी अकड़ तकड़ सब खत्म हो जाएगी। हर वक्त आदमी फिर मस्जिद में रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। अल्लाह चाहे एक सेकंड में कहानी नक्शा पलट दे, लेकिन वो मोहब्बत के मारे 70 मोह से ज़्यादा प्यार करने वाला है तो वो दरगुजर करता रहता है, शायद मेरी मोहब्बत में मेरे बंदे मेरी तरफ आ जाएं, शायद इनको एहसास हो जाए माँ के पेट से अब तक ऐश करा रहा हूँ। तो अगर अल्लाह ढील दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम हदों को तोड़ जाएँ। किसी इलाके का नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ ऐसे ऐसे हमारे मुल्क में और कराची में ऐसे ऐसे शहर हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे। कभी आप जाके देखें उन इलाकों में, लगेगा ही नहीं आप कराची के किसी शहर में, वहाँ की ख़वातीन के आप कपड़े देखें, ड्रेसिंग देखें, आप लगेगा कहीं यूरोप में आप कहीं खड़े हैं। और वहाँ की जो हरकतें वो बयान में, वो ज़बान में अल्फाज नहीं जो हम बता दें, ना कलम में ताकत है, ना पर्चों में दम है कि उसको बर्दाश्त कर सकें, ना हमारी ज़ुबान में दम है कि उसकी तफसीलात बता सकें। ये सब यहीं तो हो रहा है कराची में, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े बंगले, पैसा बेशुमार, लेकिन खुदा को भूले हुए, दीन मुखालिफ, नफ़रत दीन से नफ़रत और मुसलमान हैं। तो भाई कितने ही वक्ती तौर पर ढील मिल रही है, आखिर में तो मौत का जो शिकंजा, जब आएंगे मौत के शिकंजे में नज़र का आलम शुरू होगा तो सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। अल्लाह, तो बात हो रही थी कि हर इंसान जो परेशान है, हर इंसान चाहता है अमीर हो, गरीब हो, दौलतमंद हो, सुकून से रहूँ, चैन से रहूँ, आफियत से रहूँ, कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ में ना हो। तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं, 100% वाला भाई जो चैन सुकून हो जन्नत वाला माहौल तो हमें दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ भलाएँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, गम अपने हम ख़त्म कर सकते हैं, वो है तकवे की सूरत में, तकवा अख्तियार करने के बाद। अक्सर बताता रहता हूँ तकवे का मतलब होता है नेक अमाल के साथ, जो लोग गुनाह से बचने का गम उठाते हैं, जो गुनाह से बचते हैं, गुनाह कबीरा से। होता क्या है आज लोगों में परेशानी आती है तो कहते हैं यार 125,000 दफ़ा आयत करीमा ख़त्म करा लो, मसला हो जाएगा, या फला वजीफ़ा करा लो, या किसी आमिल के पास चलते हैं, परेशानी जानी रही, वो बताया किसी ने बहुत पहुँचे हुए आमिल हैं। तो भाई ठीक है, अल्लाह के कलाम में बहुत फ़ायदा है, कौन इनकार कर रहा है, वो भी करा लें, अल्लाह का नाम भी लें, वजीफ़ा भी पढ़ें, लेकिन कुरान हदीस शरीफ के मुताले से बात पता चलिए कामिल इस्तेफादे के लिए हमें नेक अमाल के साथ, वज़ाइफ की कसरत के साथ, अल्लाह के इस्माइल हुस्ना के साथ, जब तक हम गुनाह कबीरा को नहीं छोड़ेंगे अल्लाह की मदद वैसी नहीं आएगी जैसी आनी चाहिए। आज उम्मत ये चाह रही है कि मैं मन चाही ज़िंदगी गुजारता रहूँ, मसला समझ लें, इन अल्फाजों को जहन में दिल में बिठा लें, अक्सरियत का हाल है, अक्सरियत का, कि मैं मन चाही ज़िंदगी गुजारूँ नफ्स और शैतान की इत्तेबा में, मन चाही ज़िंदगी नहीं, जो मेरा दिल चाहेगा आज़ाद ज़िंदगी। अल्लाह रसूल का क्या तरीक़ा है, सुबह को उठने से लेके और रात को सोने तक वो जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैं अहकामात जो इत्तेबा हमें करनी चाहिए थी अफसलन की, हम वो नहीं करते, हम चाहते हैं मन चाहे आज़ाद ज़िंदगी गुजारूँ, जो मेरा दिल चाहे, उसके बाद कोई परेशानी कोई मुसीबत कोई बला आ जाए तो कोई पीर साहब मिल जाए, कोई आमिल मिल जाए, कोई वजीफ़ा तावीज़ गंडा मिल जाए, कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि मैं पढ़ूँ और मेरा मसला हल हो जाए। तो भाई ऐसा होता नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। अगर बिल्कुल हो भी गया, 2-4 महीने सुकून से गुजरेंगे, क्योंकि आदतन हराम कामों में अगर कोई मुब्तला है तो फिर दूसरी बार अल्लाह पाक भेज देंगे, दूसरी के पीछे फिर आमिल के पास भागेगा, फिर मसला बिल्कुल अगर हो भी गया चंद दिनों बाद नई बला सामने खड़ी होगी, तो ये कहाँ तक सिलसिला चलता रहेगा। तो भाई कितने तावीज़ लोगे, कितने आमिल होकर जाओगे, और दुआ भी कितनी कराओगे अल्लाह वालों से, कहाँ तक, खुद अल्लाह वाले क्यों नहीं बनते कि जेब फटे ही ख़त्म हो जाए, खुद ही अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह वालों की सुबह से कहानी ख़त्म, फिर किसी से कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी से दुआ कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, अल्लाह अपने यारों को बे यारों मददगार नहीं छोड़ता। क्या अल्फाज हैं, अल्लाह अपने यारों को बे यारों मददगार नहीं छोड़ता। और अल्लाह वाले जो लोग होते हैं उनके, थानी साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह वाले लोग होते हैं उनके इरादों पर अल्लाह को प्यार आता है। क्या मतलब कि अभी वो दुआ नहीं करते, वो उनके दिल में होता है मुझे इन मामलात में दुआ करनी है, बस अभी इरादा किया उनका मसला हल, वो हैरान होते हैं अल्लाह पाक मैंने तो इरादा किया था अभी दुआ करनी थी मुझे, तूने पहले ही मसला हल फरमा दिया, बस अल्लाह को अल्लाह वालों के इरादों में प्यार आता है, ये बात कहलाती है। जो ये वो लोग होते हैं जो खुदा पर फिदाकारी पेश करते रहते हैं अल्लाह के ऊपर, अपने अल्लाह पे मर मिटते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक अल्लाह पर फिदा होते रहते हैं। अल्लाह पर फिदा होना क्या है, अल्लाह पे मरना क्या है, जो हर वक्त इस चीज़ की उधेड़ बुन में रहते हैं कि किस बात से अल्लाह मुझसे नाराज़ हो रहा है और अल्लाह किस बात से मुझसे खुश हो रहा है और किस बात से मुझसे नाराज़ हो रहा है, बस वो इस उधेड़ बुन में रहते हैं। नमाज का वक्त हो घड़ी देखते रहेंगे, यार अभी कितना टाइम है, फिर की ना हो जमात ना निकल जाए, तकबीर ओलो ना निकल जाए, ये है फिक्र, ये है फिक्र। अरे आज मामूलात किए मैंने, कुरान पाक पढ़ा, जिक्रुल्लाह की अभी तक किए नहीं, अल्लाह माफ़ फरमा, अल्लाह मोहलत दे, मैं रश में फंसा हूँ, अब दुनिया में बैठा हुआ है सब कुछ मगन है लेकिन दिल अल्लाह के साथ चल रहा है, जिस पे बुजुर्ग फरमाते हैं ना, दुनिया के मशगलों में भी अब ये बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में भी ये बाखुदा रहे, सबके साथ रह के भी मगर सबसे जुदा रहे। बाखुदा रहने का क्या मतलब है, अल्लाह से कल्ब से मुतवज्जा रहना, दुनिया के मशगलों में भी ये बाखुदा रहे, कि दुनिया के मशगलों में रश में पब्लिक डीलिंग में लेकिन दिल उसका अल्लाह के साथ लगा हुआ है, दिल अल्लाह के साथ महवे परवाज़ है, अल्लाह के साथ लगा हुआ है, हर वक्त इस फिक्र में कोई गुनाह ना हो जाए, बदनजरी हो गई, वो गुनाह हो गया, कोई हराम काम हो गया, फौरन दिल में कहेगा अल्लाह पाक अभी गुनाह मुझसे हो गया, अल्लाह माफ़ फरमा दे इस गुनाह को, बाकी अल्लाह तफसीली तौबा जैसी मुझे फुर्सत मिलती है, अल्लाह मोहलत दे मुझे तौबा इस्तिगफार की, जैसी मौका मिलता है तो मैं तौबा करूँगा, स्टैंड बाय पे कर दे मामला को, क्योंकि अल्लाह जैसी फुर्सत मिलती है, मैं एक ये तो मैं भी खड़े खड़े रस्मी तौबा कर रहा हूँ, अल्लाह जैसी मुझे तन्हाई मिलेगी तो मैं फौरन दिल से तौबा करूँगा पक्की। इस तरह से अपने आप को रोज़ाना पाक साफ रखे रोज़ाना, और रात में सोए नहीं जब तक के सुबह से लेकर रात तक, अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत वाला अहमदुल्ला इरशाद फरमाते थे, मेरा 25 साल से मामूल है इस बात के ऊपर, मैं सोता नहीं हूँ, पहले आँखें बंद करके सोचता हूँ, खुद मेरे मामूलात में से दम वगैरह करने के बाद आंखें बंद करके देखता हूँ सुबह उठने से लेकर रात तक मुझसे कितने गुनाह हुए, क्या क्या हुआ है, अगर कोई ख़ता नज़र आती है तो फौरन तौबा करता हूँ, सोता नहीं हूँ, नींद नहीं आती, नहीं तो घबराहट बेचैनी रहती है अगर ये अमल नहीं करूँ, ऐसी आदत हुई है। हज़रत फरमाते थे ये कहलाता है वन डे ड्राई क्लीन सर्विस, एक दिन में रोज़ाना पाक साफ हो गए सो, अपने ऊपर गंद गुनाहों की जमा ही मत होने दो। पता नहीं सुबह हम उठ पाए भी नहीं उठ पाए फजर में, मौत वाक हो जाए सोते ही भी तो दम निकल जाता है। तो रात में जब तौबा इस्तग़फ़ार करके सोएंगे और फिर मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, पता नहीं अल्लाह ना करे मुँह से कोई कलमा कुफ़ुर निकल गया हो और मैं काफिर हो चुका हूँ। ये भी हकीकत है, हमें पता ही नहीं होता कितने मुसलमान हम में से काफिर हो चुके होते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह से अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। तजदीद क्या होता है? रिन्यूअल करना। बाज़ दफ़ा इंसान से कोई कलमे कुफ़ुर निकल जाता है, शिकवे शिकायतें निकल जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता ईमान से निकल जाते हैं मुसलमान लोग। तो इसलिए जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह रोज़ाना जिक्रुल्लाह करते रहते हैं, रोज़ रात को कलमा पढ़ के सोते हैं और अल्लाह से कह देते हैं अल्लाह को बात बुरी लगी हो तो माफ़ फरमा दे, कलमा पढ़ो रोज़ रात को, तौबा भी कर ली कलमा भी पढ़ लिया, अब अगर जान भी निकल जाए तो कोई गम नहीं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह बख्श देंगे। अल्लाह का खौफ तो रखें दिल में, डर तो रखें। किसी ने कहा था ना कि रात को सजदा, ऐ सोने वालों रात को सजदा करके सो, क्या खबर सुबह उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या पता। क्योंकि नींद जो होती है ये मौत की बहन कहते हैं, मौत की बहन होती है नींद। इसमें रूह, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं हम रूह कब्ज़ कर लेते हैं थोड़ी सी, मौत जैसे रूह कब्ज़ कर लेते हैं और फिर दोबारा हम सुबह को भेज देते हैं, और जिसके मुकद्दर में ज़िंदगी होती है उसको रूह वापस कर देते हैं, ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। और जिसको मौत का वक्त आ जाता है तो फिर हम उसकी रूह वापस नहीं करते, बस मौत में मौत नींद की हालत में इंतकाल हो जाता है। कितने हमारे जानने वाले हैं उसने भाई बिल्कुल सही थे, फिट थे, कोई बीमारी कुछ नहीं थी, रात में सोए सुबह उठाते रहे घर वाले उठे नहीं, पता नहीं कब सोते में इंतकाल हो गया, मौत वाक़ हो गई। इसलिए रोज़ाना पाक साफ रहने की आदत डालें, गुनाह से बचें, और अगर कभी ख़ता हो जाए तो रात में सोए नहीं, अपना असेसमेंट करें, चेक एंड बैलेंस करें, ऑडिट करें अपने अमाल का, और उसके बाद फिर तौबा करें, कलमा पढ़ें और फिर सो जाएं, बस बेफिक्र हो गए। और गुनाह की तासीर क्या है, तासीर क्वालिटी यानी जो उसकी प्रॉपर्टी खसूसियत क्या है, कैसे पता चलेगा? बाबा दबा इंसान को पता नहीं होता। हमारे प्यारे आके तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खुटके खुटक पैदा कर दे, बस वही गुनाह है। आम गुनाह कबीरा हमें तो वैसे ही पता है, बदनगरी नाच गाना है तो मोटे मोटे गुनाह है, लेकिन एक तारीफ बता दी, डेफिनेशन बता दी गुनाह की, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खुटके खुटक पैदा करे। यह आला मुकाम की बात है, जो लोग आला मुकाम रखते हैं तो वो खुटक से भी बचते हैं, मामूली सा नहीं गुनाह, खुटक से ही बचते हैं। तो जब कल मुजल्ला मुसफ़ा हो जाता है तो ज़रा सी भी चीज़ होती है, मामूली सी भी, अल्लाह की नाफरमानी, तो वो अल्लाह वालों के दिल के ऊपर खुटक पैदा कर देती है, खुटक दिल पे घबराहट तारी हो जाती है। फिर वो चेक करते हैं, फिर उनको पता चल जाता है ये खुटक क्यों थी, फिर तौबा कर लेते हैं। एक बुज़ुर्ग मिले, कहने लगे कि पूरा मेरा अल्लाह से रब्ता ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे लोड शेडिंग हो गई, ऐसा लगता है मुझसे बहुत बड़ा गुनाह कबीरा हो गया। मैंने कहा तो क्यों होता है ऐसा? कहने लगे मिसवाक छोड़ देता हूँ। क्या मतलब? वही बात, आम गुनाहगार लोगों के मामला कुछ और होते हैं, अल्लाह वालों के मामला कुछ और होते हैं। अल्लाह वाले गुनाह कबीरा तो नहीं करते, लेकिन उनकी मामूली सी ख़ता पर भी अल्लाह की ऐसी नाराज़गी होती है कि जैसे गुनाह कबीरा के ऊपर। मिसवाक करना तो सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन चूँकि वो ख़ास हैं अल्लाह वाले, तो अल्लाह पाक को इनकी अपने प्यारों की अदना छोटी सी भी चीज़ खिलाफ़ है सुन्नत करना, अल्लाह को बुरा लगता है। ये ख़ास होने की अलामत है, ये प्यारा होने की अलामत है, ख़ास और प्यारा होने की अलामत है, सख्ती होने की अलामत नहीं है। कि अल्लाह के जो प्यारे मुकर्रब होते हैं उनका यही मामला होता है। और ये और कोई हराम कामों में लगा रहे और उसके ऊपर कोई परेशानी मुसीबत ना आए, ये तो अल्लाह से दूरी की अलामत है कि अल्लाह ने उससे नजरें फेरी हैं। जानवर जो फोन में कर जब मर के आएगा ना मेरे पास, फिर तुझे बताऊँगा। और इसके पीछे दलील भी है, एक हदीस शरीफ का खुलासा है, हमारे प्यारे आकद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मनकूल है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो खूब अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, हराम काम करते हैं, और जितनी ज़्यादा वो अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, हराम काम करते हैं, तो बाज़ दफ़ा अल्लाह की हिकमत ऐसी होती है, अल्लाह की तरफ से उतनी ढील होती है, उतनी नेमतों की बारिश होती है, उतने उनके मज़े आते हैं, माल और औलाद में उनके खूब इजाफा होता रहता है, कोई गम तकलीफ़ उनको नहीं आता। तो वो शख्स, ऐसा इंसान धोखे में पड़ जाता है, कहता है अगर मैं बुरा इंसान होता अल्लाह की नज़रों में तो ऐश वशरत मुझे थोड़ी मिलते, मैं अल्लाह का प्यारा हूँ, जब भी तो अल्लाह मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक का मामला ये है कि अल्लाह उसको धोखे में रखना चाह रहे हैं, कोई परेशानी वगैरह इसलिए नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा ना हो ये हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, ऐसा ना हो तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, उसका अलग मामला है, पत्नी क्या अल्लाह से। اللہ اس کو کوئی اسی خوف غفلت میں رکھنا چاہ رہا ہے، جتنی حرام کاریاں کرے گا اتنی عیش ملیں گی اس کو، دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ دوسری قسم کے کون سے لوگ ہیں کہ جو ذرا سا کوئی ٹریک سے ہٹے اور ذرا سا انہوں نے نفس اور شیطان کی اتباع کی، وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے سب۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار ہم تو ذرا سا کچھ کرتے ہیں تو فوراً سختی آ جاتی ہے، وہ دیکھو کیا کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا، کہتے ہیں نا اکثر معاشرے میں۔ تو بھائی آپ اسلم فرما رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ ان وجہ جواب دے رہے ہیں اس شکوے کا، شکایت کا، کہ تم آگے آپ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو جو شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اور ہم تو ذرا سا کچھ کرتے ہیں پکڑا جاتی ہے، اس کے ساتھ تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ اسلم فرما رہے ہیں تم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے، تم نہیں جانتے، جس پہ ہم کہہ رہے ہیں نا اس کے ساتھ کچھ ہو نہیں رہا آگے، یعنی اللہ نے اس کو دنیا میں ڈھیل دی ہے، تو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، موت کے ساتھ ہی اس کی جو دھلائی پٹائی ہوگی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، تو حسرت مت کرو اس کی مال و دولت، اس کی عیاشی دیکھ کے، کیونکہ تم نہیں جانتے اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور پریشانی وغیرہ ایسے نہیں بھیج رہے کہ کہیں اللہ پاک چاہ رہے ہیں میری طرح متوجہ نہ ہو جائے، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی خاص کسی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں، دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، اور جس کو ذرا سی پریشان، جو ذرا سا ٹریک سے ہٹتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی سختی آ جاتی ہے گناہوں کے اوپر، یہ اس کے اللہ کا پیارا اور اللہ کا مقبول ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اس کو پریدگی میں، گندگی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے یہاں بھی پاک صاف رہے، اور مر جائے تو سیدھے دخول جنت میں تیرا داخلہ ہو جائے دنیا، تو اللہ پاک اسے پاک صاف رکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس کو ایک مخصوص ٹریک کے اوپر لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہاں بھی سکون عافیت سے رہے، اور جب مر جائے نزا کا عالم شروع ہو تو جنت میں عیش کرے، ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے جنت پکڑے، کنیکٹنگ فلائٹ نہ ہو جہنم کے ذریعے۔ یہ اللہ کا پیارا اور مقبول ہونے کی علامت ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ، تو یہ جو من چاہی زندگی ہے نا بھائی، یہ من چاہی زندگی چھوڑنی پڑے گی اور رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، اس کے بغیر خلاصہ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم میں سے کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، بچی کتنی ہے زندگیاں، ہے کہاں زندگی، 6-8 گھنٹے روزانہ سونے کے نکالتے تو حالت بیداری کی زندگی جو ہے وہ 10-15 سال کی ہے، 10-15 سال، کسی کی 5 سال، تو بچی ہے کہاں زندگی۔ بھائی اب تک جو ہوا سو ہوا، اب دوبارہ سے تقوی اختیار کر لیں، توبہ استغفار کریں اور کہیں اللہ پاک میں اس طرح بقیہ زندگی گزاروں گا جس طرح سے تو چاہتا تھا۔ تو 21 سے پاری کی ایک آیت ہے، اس میں تمام غموں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا علاج ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خشکی میں اور زمینوں میں اور سمندروں میں لوگوں کے گناہوں کے سبب مصیبتیں اور بلائیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو جتنی بھی زمین میں اور سمندروں میں جہاں جہاں یہ جو بلائیں اور مصیبتیں، بیماریاں، عذاب جو پھیل رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ میں پھیلا رہا ہوں، پہلی بار پھیلائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارے کالے اعمال، تمہارے کالے کرتوت، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں بلائیں پھیلا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تاکہ تم کو تمہارے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں۔ بعض کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں اللہ؟ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال کا مزہ چکھائیں، بعض اعمال کا کیا مطلب؟ اس میں خاص نقطہ چھپا ہوا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، 70 مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، صبح سے لے کے رات تک تم کتنے حرام کام کرتے ہو، برسوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہو، 10 سال 20 سال 50 سال ہو گئے، تم نے ننگی فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑی، تم نے ٹی وی دیکھنے نہیں چھوڑے، تم نے عورتیں لڑکیوں کو دیکھنا نہیں چھوڑا، بڈھے ہو گئے، قبر میں پیر لٹکے ہوئے، لیکن تم لوگ گناہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہو، میں پھر بھی درگزر کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، شاید اب سدھر جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی گناہ پھر تم ایسا کر جاتے ہو جس کو مجھے پکڑ کر نہیں پڑتا، تو تمہارے بعض اعمال کا مزہ چکھا۔ بعض کا مطلب ہے کتنے گناہ ایسی معاف کر دیتا ہوں، بعض اعمال کا مزہ چکھاتا ہوں، جب تم حدوں کو توڑ دیتے ہو، ہر گناہ پر نہیں، بعض اعمال کا مزہ چکھاؤں۔ مزہ چکھانے کا مطلب ہے تکلیف دوں گا، طنز کر رہے ہیں اللہ پاک، مزہ چکھانا، تکلیف دوں گا، اب تمہاری نیندیں اڑیں گی، اب تمہیں بھوک نہیں لگے گی، تمہیں لوگوں سے ملنا اچھا نہیں لگے گا، پر وحشت رہو گے، گھبراہٹ رہے گی تمہیں، بے چینی رہے گی، جہاں جاؤ گے ذلت ملے گی۔ الگ الگ ترتیب ہوتی ہے، یہ تو ایک ہلکا سا خاکہ بتائے، مزہ چکھاؤں تاکہ ہم تمہارے بعض مال کو تمہیں مزہ چکھائیں، تکلیف میں دیں، کیونکہ ماں کے پیٹ سے اب تک تمہیں عیش کرا رہے ہیں لیکن تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں آتی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر تکلیف دوں گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں آگے اس کا مقصد کیا ہے، محبت کرنے والوں، تمہیں پریشان کرنا، ٹینشن دینا نہیں ہے، تکلیف مبتلا نہیں ہے، یہ سارا مزہ چکھانے کا مقصد کیا ہے، اللہ آگے فرما رہے ہیں یہ مزہ اس لیے چکھا رہا ہوں تاکہ تم میری طرف واپس لوٹ آؤ، बस ये मसले का हल है। लौट आने का क्या मतलब है? दूर चले गए हो मुझसे, बहुत दूर उनको उठाने में, दूर चले गए हो। लौट आने का क्या मतलब है भाई? दूर चले गए, करीब आ जाओ, लौट आओ हमारी तरफ। क्यों इतने दूर चले गए? दूर होने का क्या मतलब है? कि गुनाहों में पड़ गए, हमें भूल गए हो, इसलिए तकलीफ भेज रहा हूँ। तकलीफों से क्या होता है? एक वजह, एक ये भी एक राज होता है, रोटी पानी ऐश जब तक मिलते हैं उसमें अल्लाह बहुत कम लोगों को याद आता है। तो वो तो अक्सर खवास लोग होते हैं, खासों में जो खास होते हैं। लेकिन आम कायदा ये, जितने भी लोग अल्लाह वाले दीनदार बने, 90% कोई बला, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आती है तो नफ्स की अकड़ तकड़, बदमाशियाँ, शहवत परस्ती, गलत चीज़ें ख़त्म होती हैं, हम रागे रवील से निजात हासिल होती है, उसका तस्किया होता है और उसकी रूह पाक साफ होती है और ज़ाहरी बातनी गुनाहों से बचता है। 90% ऐसा होता है, तकलीफ़ में अल्लाह याद आता है। ये जहन में इसलिए अल्लाह पाक मजबूरन ना चाहते हुए भी फिर तकलीफ भेजते हैं और अल्लाह फरमा रहे हैं कि लौट आओ। लौट आने का मतलब क्या है? दूर चले गए, यानी क्या? हमें अब अपने लौट आने का मतलब है अपने जाहिर और बातिन को बदलना पड़ेगा। जाहिर बन गया, बातिन की इसलाह होगी। पहले तो भाई दाढ़ी रखनी है, टखनों से ऊपर पाए थे, जाहिर बन गया, ये लौट आना रसूलुल्लाह सल्लम की इत्तेबा में। अब जाहिर बन गया, अब दाढ़ी टोपी के बाद गालियाँ नहीं देनी, बीवी के बाद ज्यादतियाँ नहीं करनी, हराम नहीं खाना, दूसरे गुनाहों से बचना है। तो जाहिर बन गया, बातिन की तरफ इसलाह करनी है। तो जब ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ने पड़ेंगे और बातिनी गुनाह भी छोड़ने पड़ेंगे, ये कहलाता है अल्लाह की तरफ लौट आना। तो ये चीज़ समझ में आई। तो भाई आज लोग वजीफे पढ़ने पे तैयार हैं, बड़े बड़े ख़त्म कराने पे तैयार हैं, लेकिन घरों से टीवी निकालने पे तैयार नहीं है, गैर शरी तकरीबात, मूवी, तस्वीर, मिक्स गैदरिंग छोड़ने पे तैयार नहीं है। भाभी को, इसी तरह सालियों को, कज़नों को, नामहरम लड़कियों औरतों को, उनसे जो बदनवरी करते हैं, वो बदनवरी छोड़ने पे तैयार नहीं है। भाई वजीफे पढ़वा लो, चिल्ले खिंचवा लो बड़े बड़े, भाई गुनाह छोड़ो ना भाई, यार ये कैसे कहानी चलेगी? यहाँ कहते हैं जी जी जी, बस हवा ऐसा लगता है जैसे टायर में से हवा निकल गई। तखवे की बात नहीं करो, वजीफा बताओ, वजीफा चिल्ला बताओ, चिल्ला भाई, ऐसा नहीं होता। अल्लाह को नाराज़ करके गज़ब में ला के फिर अल्लाह अल्लाह करना, उसको पुकारना, ये मजाक है। ये एक तरफ अल्लाह को गुस्से में लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सुबहानअल्लाह उसकी तस्बीह पढ़ रहे हैं। एक तरफ अब्बा के साथ बदतमीजी की जा रही है और अब्बा से दूसरी तरफ कह रहे अब्बा बरा 5,000 देना और 2 गालियाँ भी अब्बा को दे दी, और फिर कह रहे अब्बा 2,000 मांगे दो ना। तो दोनों काम चल रहे हैं, अब्बा को गालियाँ भी दी जा रही हैं और पैसे भी मांगे जा रहे हैं, अब्बा पैसे देंगे? तो भाई एक वक्त में एक काम करो, अब्बा को राज़ी करो, माफ़ी मांगो, पहले पैर पकड़ो, अभी मत बोलो। ये मशाइख का बताया हुआ तरीक़ा है, वो अल्लाह का क्या कहना है, अल्लाह की तो मिसाल किसी के साथ है नहीं, वो तो नाफरमानी के बावजूद हमें ऐश कराते हैं। लेकिन समझाने को है कि ज़्यादा फ़ायदा किस सूरत में होगा, कि अल्लाह से पहले माफ़ी मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार करें, जिन आदतन गुनाहों मुब्तला रहते हैं, ज़ाहरी और बातनी जितने हमारे गुनाह, फिर उसके बाद अल्लाह से कहें अल्लाह पाक ये परेशानी है, भी अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दो, तो अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मसला भी हल करेंगे। पहले तौबा है, पहले रूठे रब को मनाना है, पहले अल्लाह के गज़ब को तो ठंडा करें, बाद में अल्लाह से रहमत का सवाल करें। और ये ऐसी कोई जज्बाती तकरीर नहीं हो रही, कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं और तकवा अख्तियार करो, यानी गुनाहों को छोड़ो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मिल गई दलील? गालिबन सूरह यासीन में है ये। बहरहाल तो अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं, अगर चाहते हो मैं तुम पर रहम करूँ, तुम पे तरस खाऊँ, और अल्लाह जब रहम करेगा, तरस खाएगा तो बेड़ा पार है। तो क्या फरमा रहे हैं? उसको एक ही तरीका कह रहे हैं, गुनाहों से बचो, तकवा अख्तियार करो। तो तकवे की फील्ड कहाँ तक जा रही है? लेकिन आज जो है लोग माशाल्लाह बड़ी बड़ी दीनी सोहतों में भी जाते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार भी करते हैं, अजुमरे भी करते हैं, सबके खैरात भी करते हैं, दाढ़ियाँ भी रखते हैं, कितनी खवातीन शरी पर्दे भी करती हैं, लेकिन गुनाह छोड़ने पे तैयार नहीं है। भाई तो कैसे कैसे मसला हल होगा? गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद अल्लाह की सही मायनों में मदद आएगी। ये तो कुछ जुज़वी तौर पर तकवा अख्तियार किया, लेकिन तकवे की फील्ड तो बड़ी है ना, आगे भी चलना है। जैसे बाज़ खवातीन होती हैं, उनके मिजाज में बड़ा गुस्सा होता है, शरई पर्दा भी करती हैं और कुछ बद अखलाकी भी होती है, भले दिल में उनके तकबर ना हो, बद अखलाकी ना हो, लेकिन जब कोई नई खातून उनसे मिलती हैं तो उनके दिल में ये बात आती है कि यार ये खातून से ज़रा दूरी रहो, ज़रा कुछ ये गुस्से वाली लग रही हैं कुछ, और ज़रा तुनक मिजाज की, गुस्से वाली, और तकबर भी महसूस हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी है वो खातून, लेकिन भाई लोग आपसे मिल के ऐसा गुमान क्यों कर रहे हैं? माना आप बहुत अल्लाह वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ख़वातीन आपसे अगर मिल रही हैं तो उनके दिल में ये बात क्यों आ रही है? बदगुमान हो गई, चले माना वो बदगुमान हो गई होंगी, चले भाई एक हो, एक बदगुमान होगी ना, दूसरी औरत की भी रहेगी, उसने बताई तीसरी नहीं भी का, चौथी नहीं भी का, तो एक वक्त में छः छः लोग कैसे बदगुमान हो सकते हैं। तो पता चला आपने शरीर पर होगा कर लिया, मुबारक है, लेकिन खुश अखलाक होना, हंस के बातचीत करना, आजी के साथ मिलना, ये भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये भी सहाबियात की सुन्नत है, ये भी अज़वाज मुतहरात की सुन्नत है। खुशगवार मुस्कुराते हुए मिलना, हंसते हुए मिलना, रूठ लहजे में नहीं मिलना चाहिए कि दोबारा को खातों वाले भाई बस आज मिल लिए दोबारा नहीं मिलेंगे, इनसे जान छोड़ो। तो बदमिजाजी जो है अच्छी चीज़ नहीं है, इसको बोलते थे हज़रत वाला रहमतुल्लाह, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, खुश मिजाजी हज़रत फरमाते थे, खुश रहो, खुश खुश्क मत रहो, खुश थे शीन काफ खुश फरमाते थे, खुश मत रहो, खुश रहो खुश। तो बहुत से लोग खुश रहने को खुश रहना समझ लेते हैं, भाई खुश आदमी तो उससे तो वहशत होती है, घबराहट होती है। अगर कोई औरत खुश मिजाज होगी तो जितनी भी औरतें उसके हल्के बाब में मिलेंगी वो घबराएंगी, हटो बच्चों की पॉलिसी पे चलेंगी खुश मिजाजी। इसी तरह अगर कोई मर्द अगर खुश मिजाज होगा, हंसने बोलने वाला नहीं होगा, फिर रूढ़ और चेहरा अपना सुखड़ा वाले के बैठा रहेगा तो वो लोग उससे करीब नहीं आएंगे। हज़रत वाला हमारे मुर्शिद आरिफिल्ला हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमत इरशाद फरमाते थे, मुझे बचपन से ऐसे लोगों से बड़ी चिड़ रही है जो खुश मिजाज होते हैं, मुझे हंसने बोलने वाले लोग पसंद है। शुरू से फरमाते थे, मैं बच्चा था 8-9 साल की उम्र का, हमारे मोहल्ले में एक बड़े मियाँ थे, बहुत ही खुश मिजाज थे, हर एक को डांटते रहते थे, चीखते रहते थे। तो कहते जहाँ वो खड़े होते थे मैं 20 फीट दूर से गुजरता था, करीब से भी नहीं गुजरता था, अपना मिजाज हज़रत फरमाते थे। तो बहरहाल तो बाअख़लाक होना चाहिए ऐसी ख़वातीन को, और बास ख़वातीन बैत हो जाती हैं लेकिन इस्लाह नहीं कराती, और बास ख़वातीन इसलिए बैत होती हैं शेख के अपने शौहर की इस्लाह के लिए। ये बड़ा मज़ेदार जुमला है, बहुत सी ख़वातीन इसलिए बैत होती हैं अपने शौहर की इस्लाह कराने की नीयत से, अजीब बात बता रहा हूँ, ये बैत हुई है अपनी इस्लाह के लिए नहीं हुई है, वो शौहर की इस्लाह की नीयत से शेख से ताल्लुक कायम किए, चलो बहाने शेख जो हमारे शौहर हैं उनके हम इस्लाह कराते रहेंगे, अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं। भाई कोई शेख से कोई खेलता है तो शेख भी खेलता है, अल्लाह वालों को क्या समझते हैं उनके ग़ुलामों को, उनकी नज़र बहुत आगे तक होती है। तो अपनी इस्लाह के लिए बैत होना चाहिए, अपनी इस्लाह के लिए जो है ना रुजू करना चाहिए। हाँ अगर शौहर की तरफ से कोई ज्यादती हो रही है तो एक अलग मामला है, उसकी भी इस्लाह कराए, मना नहीं, लेकिन नीयत दुरुस्त हो बैत होने की इस्लाह की, तो अपने जो मामलात हैं बताने चाहिए। या इसी तरह बहुत से लोग अच्छी अच्छी चीज़ें तो बता देते हैं शेख को, औरत मैं सोया मैंने देखा गुम्बद खिजरा मेरे सामने आ गया, और फिर मैंने ये देखा मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, फिर ये हुआ वो हुआ, मुबारक है माशाल्लाह अच्छी बात है, ये नहीं बता रहे। और 3 दिन पहले व्हाट्सएप पे गलत वेबसाइट पे चले गए थे, नंगी चीज़ें देखी हैं, औरत इसकी इस्लाह फरमा दें। या मैं एक हफ़्ते से बदनजरी कर रहा हूँ, यहाँ कोई इस तरह की इस्लाह नहीं है भाई, लेकिन वही बात बंदा मोमिन की फिरासत से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह हमें भी वो नज़र अता फरमा दे जो अल्लाह पाक अपने प्यारों को देता है ताला की बरकत से। मतलब क्या है कि अल्लाह पाक शेख के दिल में बार दफ़ा डाल देते हैं किसी के बारे में, देखो ये तुमसे अच्छी अच्छी बातें तो तुम्हें बता देता है लेकिन अपनी गंदी गलत बातें जो काबिल इस्लाह है वो ये नहीं बता रहा। तो भाई दोनों बातें बतानी चाहिए, अच्छी चीज़ें भी बताए आदमी, और गन अगर खाने की आदत है किसी हराम फाल में मुबतला है कोई शख्स तो उसको चाहिए वो इस्लाह कराए। अगर नहीं इस्लाह कराई, अक्सर कहता रहता हूँ फिर परेशानी आएंगी, फिर डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से इस्लाह होती है, फिर अल्लाह की तरफ से जब इस्लाह होती है तो उसमें फिर बार दफ़ा चीखें निकल जाती हैं। तो भाई शेख करने का मकसद क्या है, बैत होने का मकसद क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता। अक्सर बैत होने का मतलब ये होता है हाथ में हाथ देने का, कि मैं अपने शेख से अगर कोई खिलाफ़ शरा कोई काम नज़र आया, कोई गुनाह मुझे नज़र आया तो अपने शेख से इस्लाह कराऊंगा गुनाहों की और तकवा अख्तियार करूंगा इंशाल्लाह, इस नीयत से बैत हुआ जाता है। और इस इखलास नीयत की बरकत से फिर अल्लाह पाक दुनिया भी परेशानी भी दूर कर देते हैं और उखरवी परेशानी भी दूर कर देते हैं और उसके मसले मसाइल भी कर देते हैं, नीयत में इखलास पैदा होता है। तो ये है बैत का मकसद। आज बैत का क्या मकसद है, दुकान नहीं चल रही दुकान चल पड़े, कारोबार नहीं चल रहा कारोबार चल जाए, नौकरी नहीं मिल रही नौकरी मिल जाए, पैसे अच्छे हो जाए, कोई बीमारी तकलीफ़ आई हुई है तो बीमारी दूर हो जाए। आजकल पीरी मुरीदी बैत होने का मामला ये इस नीयत से हो जाता है। भाई ये तो इखलास ही नहीं है, अल्लाह के लिए ताल्लुक़ कायम करो, अल्लाह की रज़ा के लिए ये चीज़ें भी रखे आदमी, दुआ भी कराए, लेकिन दर्जा सानी में इखलास हो, फिर उसके बाद अल्लाह का फजल होता है, फिर देखें इस रस्ते का मज़ा। नीयत को दुरुस्त करें पहले, अल्लाह के लिए ताल्लुक़ हो, कोई दुनियावी हाजत ना हो, वो दर्जा सानी में दूसरे नंबर पर रखें, جو بھی مسئلے مسائل ہیں. تو جب اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اخلاص کی نیت سے تو اللہ پاک خوش ہو کے سارے مسئلے مسائل ہماری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. تو یہ جو بات چلی تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف لوٹ آؤ, تو لوٹ آنے کا مطلب سمجھے کہ تقوی اختیار کریں, گناہوں کو چھوڑ دیں, شب و روز بدلیں, دن و رات بدلیں, اپنے جو سوچنے کا انداز بدلیں, جینے کا انداز بدلیں, یہ اب اللہ کی طرف لوٹ آنا اور اس میں مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پریشانی دور کر دوں گا, اور اللہ کی رحمت کیا ہے, اللہ کی طرف سے پریشانیاں ڈگری وائز آتی ہیں. اکثر بتاتا رہتا ہوں, ایک مثال دے کے, جب پولیس کی مار ہوتی ہے نا, فرسٹ ڈگری کی مار, سیکنڈ ڈگری کی مار, تھرڈ ڈگری کی مار, تو پولیس والے کسی پہ, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ ڈائریکٹ تھرڈ ڈگری استعمال کرنے, پہلے ہلکی فرسٹ ڈگری لگاتے ہیں. جو اس مجرم سے پوچھنا ہوتا ہے, بھائی تمہارے ساتھ کتنے کتنے کرمنل لوگ ہیں, کہاں کہاں تم نے ڈکیتی ہماری, کیا غلط کام کیا, بتا دو شرافت سے. اگر وہ فرسٹ ڈگری میں اگر وہ بتا دیتے ہیں تو پھر پولیس سیکنڈ ڈگری استعمال نہیں کرتی. بہت ہی کوئی سخت اڑیل ہوتا ہے تو پھر سیکنڈ ڈگری کی نوبت آتی ہے, اور پھر بہت ہی کوئی سخت ہوا سیکنڈ ڈگری پر بھی وہ اپنی حالت نہیں سدھار رہا اور نہیں معافی مانگ رہا اور نہیں بتا رہا, تو پھر تھرڈ ڈگری میں بعض دفعہ برداشت نہیں ہوتا ایسے مجرموں سے, پھر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تھرڈ ڈگری میں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے تو نکلی ہیں ساری چیزیں. تو اللہ پاک کی بھی یہی ترتیب ہے, اللہ پاک پہلے محبت میں عیش کراتے ہیں, سختی نہیں بھیجتے ہیں, رحمتیں, نعمتیں, مزے, سکون, چین, میٹھی نیند سب عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ ریپلائی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس بندے یا بندی کو اتنا عیش کرا رہا ہوں, اب میں دیکھوں میرے ساتھ ریپلائی کیا کرتا ہے, ریپلائی کیا دیتا ہے مجھے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, یہ تو ہمارا بھی تو یہ معاملہ ہے, ہم اپنے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان پہ جان و مال سے فدا رہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, بس نہیں چلتا اپنا دل نکال کے کھلا دیں محبت میں, ہم ایسا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے ساتھ ہمارے اپنے بے وفائی کرتے ہیں, محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے, وہ بیوی سے محبت کر رہا ہے, خیال کر رہا ہے, اور بیوی اس کا بے وفائی کرے, زیادتی کرے اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھوپے, تو اس شوہر کا دل پھٹ جائے گا, پھٹ جائے گا دل اس کا غم سے کہ یار میں تو ایسا اور یہ ایسی. کوئی بھی رشتہ بیوی کی تو ایک مثال ہے, تو برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں جب میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں, محبت کر رہا ہوں, وفا نبھا رہا ہوں, تم میرے ساتھ کیسے بے وفائی کر رہے ہو, تکلیف ہوتی ہے نا ہمیں. تو بھائی آپ, ہم بندوں تو بندوں میں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں تو لوگ بھی ہمارے ساتھ مخلص ہیں, تو جب ہم اپنے لوگوں سے, بندوں سے وفا ڈھونڈ رہے ہیں, مخلص پن چاہ رہے ہیں, تو رب العالمین بھی تو ہم سے وفا اور محبت چاہ رہے ہیں. ہم اللہ کو کیا پیش کر رہے ہیں, یعنی ہم تو سب کے ساتھ وفا کریں, اور ہم چاہیں جی جواب میں ہمارے ساتھ بھی وفا ہمیں ملے, چاہے ہم اللہ کے ساتھ کتنی بے وفائی کرتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. اگر چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ وفا نبھائیں, محبت کریں ہمارے کے ساتھ, تو پہلے ہمیں اپنے رب کے ساتھ, اپنے پالنے والے کے ساتھ وفا نبھانی پڑے گی. تو پھر اس کی پاداش میں, اس معاوضے کی شکل میں, اس جزا میں پھر دنیا ہمارے ساتھ وفا نبھائے گی, کیونکہ جو شخص اپنے اللہ کے ساتھ وفا نبھاتا ہے, دنیا اس کے ساتھ وفا نبھاتی ہے, اور جو اللہ کے ساتھ بے وفا, جو اپنے اللہ کا پالنے والے کا بے وفا ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, اس کے ساتھ دنیا اس کو ٹھوکر مارے گی, کیونکہ یہ شخص اپنے رب کے ساتھ وفادار نہیں ہے. تو اس لیے بھائی, مخلوق سے شکوے شکایتیں کرنے سے بہتر ہے ہم اپنے معاملات اللہ سے درست کریں. جب اللہ پاک سے معاملات درست ہو جائیں گے تو اللہ پاک مخلوق کے معاملات ہمارے ساتھ ویسے ہی خود صحیح کرا دے گا. آج ہر آدمی دوسرا ہی رو رہا ہوتا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اپنے عزیز کے ساتھ یہ کیا, مجھے جواب میں میرے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ. ارے بھائی تم کتنے اللہ کے وفادار ہو ذرا یہ تو بتاؤ. تو بس وہ کسی نے کہا نا کہ اللہ کی طرف سے ایک شعر فرمایا, تو میرا تو بن, تو میرا تو بن, ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا, تو میرا تو بن, ہر کسی کو نہ تیرا نہ بنا دوں تو کہہ دینا. تو آج ہم اللہ کو چھوڑ کے دنیا کو اپنا بنانے کے چکر میں, جس کی وجہ سے ذلت ملتی ہے. تو جب آدمی اللہ کی طرف آتا ہے, حدیث شریف اکثر سناتا رہتا ہوں, جب اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے بھائی, پھر اللہ پاک جبریل امین کو بلا کے فرماتے ہیں, یہ میرا پیارا, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم پوری کائنات میں اعلان کر دو. خلاصہ حدیث پاک کا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرتے ہو, اور اعلان کرا دو پوری کائنات میں. تو کائنات کا ذرہ ذرہ, انسان, جنات, مسلمان, کافر, جانور, جو جنگل کے جو جانور ہیں وہ, اور سمندر کی مخلوقات, وہ شخص جہاں جدھر جس کونے میں اللہ والا جائے گا, دنیا اس پر فدا ہوگی, محبت کرے گی. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس بندے کی محبت کائنات کے ذرے ذرے میں ڈال دوں گا, ہر آدمی اس سے محبت کرے گا, کیونکہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا اور تقوی سے رہتا. یہ ہے راز, اگر ہم وفا چاہتے ہیں اپنے تو اپنے, غیر بھی محبت کریں گے. حضرت کا شعر تھا نا کہ وہ اپنے تو کیا ہیں غیر بھی کرتے ہیں احترام, اپنے تو کیا ہیں غیر بھی کرتے ہیں احترام, چہرے پر جو ہے داڑھی کی سنت لیے ہوئے, چہرے پر جو ہے داڑھی کی سنت لیے ہوئے, या 125,000 अंबिया कराम की सुन्नत है। अल्लाह, जिगर मुरादाबादी ने यही तो शेर फरमाया था, मेरा कमाल इश्क बस इतना है ए जिगर, मेरा कमाल इश्क बस इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। भाई ये है तरीक़ा मोहब्बत हासिल करने का, अल्लाह से मोहब्बत करके तो हम देखें, अल्लाह पर फिदाकारी करके तो देखें, हलाल और हराम के चक्कर में तो पढ़ के देखें, जायज़ और नाजायज़ के चक्कर में तो पढ़ के देखें, ज़रा अल्लाह की मोहब्बत में दिल तोड़ के तो देखें, फिर देखें क्या कहते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं एक शेर की सूरत में अल्लाह की तरफ से धुनी मार कर तो देख, इल्मो हिकमत के ख़जाने न बखेर तू तो कहना, उसका दूसरा शेर है, कौन से शेर का, तू मेरा तो बन हर किसी को तेरा ना बना दूँ तो कहना। धुनी मार कर बैठ का मतलब है मुराकबे की शक्ल इख्तियार करना, हर तरफ से कट के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, ये मतलब है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इल्मो हिकमत के ख़जाने ना बखेर तू तो कहना, मेरी राह में चल कर तो देख फासलों को ना समेट दूँ तो कहना। सारे रास्ते शॉर्ट कर देंगे अल्लाह पाक, हम चाहें तो सही, मसला ये है कि हम अल्लाह को गुनाहों के साथ ढूंढ रहे हैं, अल्लाह की तलाश जारी है लेकिन गुनाहों के साथ, बदनजरी के साथ, हरामकारियों के साथ। अल्लाह नहीं मिलेगा, सवाब मिल जाएगा नेक अमाल का, अल्लाह नहीं मिलेगा, तक्वा नहीं मिलेगा, कैसे मसाइल हल होंगे। तो भाई आज बड़े बड़े दीनदार घरानों का भी बहुत बुरा हाल है, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने बचाया हो, तो बग़ैर तो दीनी रस्मी तौर पे बहुत नज़र आएगा, लेकिन जब कहीं शादी ब्याह की जब तकरीब होती है उस वक्त देखिए उनका हाल, दूर दूर सुन्नत शरीयत से वास्ता भी नज़र नहीं आएगा। तो पता चला है दीनदारी नहीं थी तो दुकानदारी थी, वक्त पे तो पता चलता है कि कितना अल्लाह को याद रखा है। खुशी और गमी दो मौके होते हैं, उस वक्त पता चलता है इस बंदे ने अल्लाह को कितना याद रखा है, क्योंकि दोनों वक्त बहुत प्रेशर होता है, उस वक्त देखते हैं कौन अल्लाह को याद रखता है। नॉर्मल हालात में याद रखा तो क्या रखा, जब खुशी और गमी दो वक्त होते हैं उस वक्त प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, उस वक्त देखा जाएगा कौन अल्लाह को उस वक्त याद रखता है, कौन गुनाह से बचने का अहतमाम करता है। अल्लाह, तो जो डिग्रियों की बात हो रही थी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो फिर अल्लाह पाक जब मोहब्बत से प्यार से पहले नेमतें देते हैं, अभी डिग्रियाँ नहीं शुरू, फिर एक वक्त तक अल्लाह पाक देखते हैं 10 साल 20 साल 30 साल देखते हैं, नहीं भाई इस पर असर नहीं हो रहा, ये प्यार का बंदा है, फिर अल्लाह को भी पता है इसका वक्त थोड़ा रह गया दुनिया में, अब मरेगा तो ये बेचारा तकलीफ़ उठाएगा नज़र के वक्त कब्र में अशर में, 102 तो बुखार इससे बर्दाश्त नहीं होता, नन्हे काके से रोने गाने लगता है, तो ये मौत की तकलीफ़ कहाँ से झटका बर्दाश्त करेगा, अज़ाब कब्र कहाँ से वो बर्दाश्त करेगा। तो ये अल्लाह के मकबूल प्यारे बंदों का मामला बता रहा हूँ, जब वो बेबाकी से और आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से फर्स्ट डिग्री आती है परेशानी की। तो अक्लमंद आदमी है जो फर्स्ट डिग्री पे ही लरज़ उठे, कांप जाए, डर जाए, अल्लाह का खौफ दिल में लिया और कह दे अल्लाह मेरे अंदर दम नहीं है, मेरे दिल दिमाग में जान नहीं है, मैं तेरे किसी मामूली से भी आज़ाब को बर्दाश्त कर सकूँ, बस अल्लाह माफ़ फरमा दे, अगर कोई गुनाह नज़र आ रहा है तौबा कर ले गुनाह कबीरा, अल्लाह माफ़, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया, तो जो अल्लाह ने फर्स्ट डिग्री परेशानी की भेजी है अल्लाह पाक उसको हटा देंगे, क्लियर हो गया मामला। अब जो अड़ियल मिजाज का होगा और अल्लाह ने फर्स्ट डिग्री भेजी और वो कहे यार दुनिया में आए परेशानियाँ तो आएंगी, फिर अल्लाह कहते हैं अच्छा इसका मतलब है तू बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर, बहुत स्ट्रांग मैन है तू, ठीक है दुनिया में आया और तू खुद सीना सफ़र है और तू खुद कह रहा है कि दुनिया में परेशानियाँ तो आएंगी, मतलब ये है कि मैं अपनी बदमाशियाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो यही करूँगा, फिर अल्लाह फिर सेकेंड डिग्री भेजते हैं, फिर सेकंड डिग्री जो होगी पिछली डिग्री से ज़्यादा ख़तरनाक होगी, बहुत से लोग उसमें सुधर जाते हैं, छोड़ देते हैं गुनाह। अब अक्लमंद आदमी वो है कि भाई जो फर्स्ट डिग्री है सेकंड डिग्री में हथियार डाल दे और अल्लाह के आगे रो दे बस, और अपने जो गुनाह नज़र आए असेसमेंट करे, ऑडिट करे और उनको छोड़ दे, तो अल्लाह पाक मज़ीद उसको फिर उस पर कोई डिग्रियाँ नहीं भेजेंगे, सख्तियाँ नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर वही बात अड़ियल बना रहा और गंदे आमाल को नहीं छोड़ा उसने, तो फिर थर्ड डिग्री आएगी, फिर थर्ड डिग्री बहुत ख़तरनाक होती है, फिर बिस्तर से भी ना उठ पाए बनता है। तो इसलिए भाई अकलमंदी का तकाजा ये है कि अल्लाह से हम डर जाएं, जो अल्लाह से डर गया वो बच गया, अल्फाज जहन में रखिएगा, जो अल्लाह से डर गया वो दुनिया में भी अल्लाह के अज़ाबों से बच गया और आखरत में भी अल्लाह के अज़ाबों से बच गया। सवाल ये अब डरते ही तो नहीं है, डरने का क्या मतलब है, हर आदमी कह सकता है मैं तो डर रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे बात कह रहे हैं, मैं तो खौफ रखता हूँ दिल में, हर दावा अपने पीछे दलील रखता है, अगर कोई समझता है मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ तो अल्लाह पाक कुरान पाक में जो फरमाया डरने वालों की कुछ सिफात अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरने वालों की सिफात ये बयान फरमा रहे हैं, इसका खुलासा ये है कि ऐसे लोग गुनाहों से बचते हैं और तकवा अख्तियार करते हैं जो वाकई अल्लाह से डरने वाले होते हैं। आज हम देखें हमने कितना तकवा अख्तियार किया हुआ, कितने हम गुनाहों से बचने वाले हैं। जो आदमी गुनाह से नहीं बच रहा वो क्या दावा करता है अल्लाह से डरने का? अरे मजाक करते हो तुम, वो क्या दावा कर रहा है अल्लाह से डरने का? अल्लाह से डरने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और अल्लाह ने फरमाया एक जगह, ये जब बाज लोग कहते हैं ना तकवे बहुत बयान करते हैं, भाई हम मजबूर हैं, तकवे के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता पूरी। और ये कुरान हदीस का खुलासा उम्मत का जमा है तकवे के ऊपर। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं एक आयत का खुलासा है कि ये लोगों अपनी ज़बान से अपना तकवा और अपना तज़किया अपने आप को पाकीज़ा मत ठहराओ कि मैं बहुत पाक साफ हूँ, मैं बहुत अल्लाह वाला हूँ, मैं बहुत मुत्तकी हूँ। तकवे का अल्लाह इस्तेमाल करें, अब मुत्तकी अपने आप को मत बोलो अपने मुँह से, पाकीज़ा मत ठहराओ अपने आप को अपनी ज़बान से, क्योंकि मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब तुम लोग अपनी माओ के पेटों में थे। मैं उस वक्त से तुमको जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा खालिक और मालिक हूँ। तो अपने मुँह से मत बोलो मैं मुत्तकी हूँ, बहुत पाकीज़ा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं माओ के पेटों से तुम्हें जानता हूँ, मैंने ही तुम्हें पैदा किया। हाँ दुनिया बोले, अगर कोई बोल रही है वो अल्लाह की तरफ से के नाम है, कोई आपको कोई अल्लाह वाला समझ रहा है, कोई मुत्तकी समझ रहा है, वो दुनिया समझती रहे, लेकिन जिसको समझा जा रहा है वो खुद अपने आप को मुत्तकी अल्लाह वाला ना समझे, मना किया। इसलिए मशायख फरमाते हैं नेक बनना फ़र्ज़ लेकिन ख़ुद को नेक समझना हराम, मुत्तकी बनना फ़र्ज़ लेकिन मुत्तकी ख़ुद को समझना हराम। ऊपर चेहरा उठा के ऊपर सुने, गर्दन ऊपर उठा के सुने तो नींद आ जाती है। तो मुत्तकी बनना फ़र्ज़ लेकिन मुत्तकी ख़ुद को समझना हराम, अल्लाह वाला बनना फ़र्ज़ लेकिन ख़ुद को अल्लाह वाला समझना हराम। ये है राज, नहीं तो तकब्बुर पैदा हो जाता है इंसान के अंदर। अल्लाह जल्ला जलालहु व तआला शान। तो भाई पता चला कि ये तकवा कितनी अहमियत रखता है, अल्लाह को पता है। तो अल्लाह खुद, और आगे अल्लाह ने फिर दोबारा तकवे की बात आती है। बहुत से लोग कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पूछो भाई क्या अल्लाह का बड़ा शुक्र है? रिश्वत और सूद से हराम पे उसे पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली और उस पर लिखवा दिया हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, जब पूरा कौफर लिखवा दी इन्ना आता ही नकल कबूतर, नज़र बद से बचने की नहीं, तो क्या जहालत है। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये उल्टी सीधी बकवासें मत करो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ शख्स जब तुम लोग माओ के पेटों में थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुमको वाकई मेरा शुक्र अदा करना है, शुक्रिया हम कहते हैं ना अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया नेमतों का, वाकई तुम इकरार करते हो मेरी, तो अल्लाह फरमा रहा है ज़बान ही नहीं मुँह से कि अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाह फरमा रहा है अगर वाकई दिल से मेरा शुक्र अदा करना चाहते हो तकवा अख्तियार करो, गुनाहों को छोड़ दो, तो तुमने मेरा शुक्रिया अदा कर दिया। देखो हमारी बात है नऊज़ बिल्लाह, ये तो अल्लाह की बात है भाई, ये है तकवा, शुक्रिया भी अल्लाह कह रहे हैं, वरना हमारा शुक्रिया कबूल नहीं है, शुक्रिया कबूल नहीं है हमारा, शुक्रिया तो तकवे की सूरत में कबूल होगा। कहाँ तक बात करें फिर वो बात, और आखिर में दो तीन आमाते तकवा बता दूँ, कुछ नए लोग भी हैं भाई, अब तकवे में मिलेगा क्या, परेशानियाँ दूर कैसे होंगी? एक आयत बता दी सूरह तलाक की, कुछ आयतें और दूसरी सूरतें भी हैं, वमई यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा हर मुसीबत से निकाल देंगे। ये जहन में बिठा लें, और इस क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान पाक में क्या कहना काफ़ी नहीं था? नऊज़ बिल्लाह काफ़ी था, अल्लाह ने कहा मुसीबत से निकाल देंगे, यकीनन निकालेंगे, जो गुनाहों को छोड़ेगा किसी की दो राय नहीं है। लेकिन हमारी खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद पर्चा और आसान करवा दिया कि आप उसमें इरशाद फरमा रहे हैं अगर मेरी उम्मत पूरे कुरान में से सिर्फ ये एक आयत अगर पकड़ ले, यानी पूरा कुरान नहीं भी समझे अमल करे, ये सिर्फ एक आयत को पढ़ ले समझ ले अमल कर ले, यही वमैयत तकिल अजल्लहु मखरजा, तो दुनिया और आखरत के तमाम गमों की नहीं काफ़ी हो जाए। अल्लाह ने तो कह दिया था काफ़ी था, फिर मज़ीद आप सल्लम उसकी तशरीह बयान कर रहे हैं कि भाई पूरा कुरान नहीं समझ रहा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नहीं तुम्हारे पास टाइम मिला, इस एक आयत पर पक्का ईमान ले आओ, इस आयत के आमिल बन जाओ यानी अमल करने वाले बन जाओ, गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह और मुसीबत से निकाल देंगे दुनिया की भी और आखरत की भी, पहला नाम। दूसरा नाम अल्लाह फरमा रहे हैं ऐसी जगह से रिस्क दूंगा जहाँ तुम्हारे वहम गुमान में नहीं होगा, माला माल कर दूंगा, पैसा दूंगा, मुसीबत से भी निकाल रहे हैं पैसा भी दे रहे हैं। तीसरा नाम अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि इज्जत दूंगा, कि मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, अल्लाह के दरबार में उस शख्स इज्जत पा जाएगा। जब अल्लाह के दरबार में इज्जत पाएगा तो जहाँ जाएगा लोग सर आँखों पर बैठाएंगे उसको, क्योंकि ये जालिम अल्लाह के दरबार में इज्जत पा चुका है। हेड क्वार्टर में जब इज्जत होगी तो क्या ब्रांच ऑफिस में कोई मुंह नहीं लगाएगा? हेड ऑफिस में भाई जिसका तूती बोलती हो, ब्रांच ऑफिस तो ब्रांच ऑफिस है, उसकी हकीकत ही क्या है? अल्लाह का दरबार अर्शे मौला पे इज्जत वाला, अल्लाह के डायरी में अल्लाह के रजिस्टर में बाइज्जत लिखा हुआ होगा, उसको जिल्लत मिलेगी कोई? जहाँ जाएगा लोग उसकी जूतियाँ उठाना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे। तो भाई हेड ऑफिस में अप्रोच करें, ये ब्रांच ऑफिस में इज्जत ना चाहें, ये तो जिल्लत की जगह है दुनिया। अल्लाह और चौथा इनाम क्या है? अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो तकवा अख्तियार करता है तो हम उसके माजी के गुनाहों को सईआत को हसनात से तब्दील कर देंगे, गुनाहों को नेक अमाल से तब्दील कर देंगे। इसने माजी के गुनाह किए थे, तौबा की, तकवे पर अब आ गया। अब अल्लाह ये नहीं कह रहा मैं गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, होना तो ये चाहिए था कानून के हिसाब से कि तुमने 10 लाख गुनाह किए थे, जीरो कर दिया, जीरो मीटर कर दिया, आइंदा ख्याल करना, तकवे से रहना, जाओ माफ़ किया। नहीं, अल्लाह कह रहे हैं 10 लाख अगर किसी ने गुनाह किए हैं तो उसके गुनाहों को तब्दील कर दूंगा नेक अमाल से, अल्लाह से खाते में लिखेंगे इसने माजी में 10 लाख गुनाह नहीं, 10 लाख नेक अमाल किए थे। बताएं तकवे का क्या माशाल्लाह इनाम चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है? फिर आखिर में सबसे बड़ा इनाम क्या है? अल्लाह फरमा रहे हैं इन औलिया हुई लिल मुत्तकून, मेरा वली मेरा दोस्त सिर्फ वो है जो तकवे से रहेगा, जो गुनाह कबीरा से बचेगा, वही मेरा वली है, वही मेरा दोस्त है। और अल्लाह ने भी फरमा दिया कि अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है, सुनते रहते ना। तो अल्लाह के वलियों की शान, अल्लाह का वली किस चीज़ से बन रहा है? जो लोग तकवा अख्तियार करते हैं। तकवा अख्तियार करने का मतलब ये नहीं कि उनसे खतई ही नहीं होगी, ऐसी एल्फी उनके लग गई है माशाल्लाह तकवे की कि मौत तक उनसे गुनाह ही नहीं होगा, ये मकसद नहीं है। वो फिर अंबिया कराम की ज़ात होती है, अक्सर बताता रहता हूँ मैं, वो जिनसे कोई ख़ता नहीं होती, बड़े से बड़ा कुतुब अब्दाल गौस कलंदरी क्यों ना, वो पुरख़ता होते हैं, वो मासूम नहीं होते, वो अलग बात है, अल्लाह की तरफ से गुनाहों से उनकी हिफाजत की जाती है। लेकिन होता क्या है कि उनसे ख़ता हो सकती है। तो तकवे से रहने का मतलब ये है कि जान लड़ा के गुनाह कबीरा से बचें, ज़ाहरी और बातनी गुनाहों को छोड़ें, बचें। लेकिन कभी इंसान है, कभी नफ्स और शैतान फिसला दें तो फिर तौबा करने में आदमी देर ना करे, फिर फौरन तौबा कर ले, फौरन तौबा कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला उसका तकवे के मुकाम से कभी खुरूज नहीं होगा। ऐसा शख्स भी अल्लाह का वली है। शर्त यह है कि लफ्ज़ आदतन जहन में रखें, आदतन हम किसी गुनाह कबीरा में मुबतला ना रहें, ये है। तो बस ये सारे भाई चीज़ें बता दी हैं, अगर हमें दुनिया और आखिरत में चैन और सुकून से रहना है। आखिर में हज़रत आला की एक बात और याद आ रही है, बहुत से लोग तकवे से रह रहे होते हैं तो वो परेशानी आ जाती है और जाती नहीं है। तो हज़रत फरमाते थे कि अल्लाह की कुरान पाक की आयात पे शक मत करो। बाज़ दफ़ा इंसान कहता है जी मैं तो तकवे से भी रह रहा हूँ फिर भी मेरे पे बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। तो हज़रत फरमाते थे कि अपने तकवे का ऑडिट करो, अपने तकवे को चेक करो, अपने तकवे को ऑडिट करो, ज़रूर तुम्हारे तकवा पर कहीं ना कहीं लकवा गिरा हुआ है, कहीं तुम्हारे तकवा पे कहीं ना कहीं लकवा गिरा हुआ है, तलाश करो ज़रूर। तुम कई गुनाह कबीरा में मुबतला हो, काफ़ी गुनाह छोड़ दिए होंगे माशाल्लाह, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गुनाह कबीरा होंगे जिसमें तुम मुबतला होगे। तो मायूस मत हो, शक अपने ऊपर करो, अपने तकवे पर करो, अल्लाह के कुरान पाक के ऊपर शक मत करो। ख़राबी कुरान पाक में नहीं हो सकती, ख़राबी हमारे अंदर ही होती है, उसको तलाश करो और रेक्टिफाई कर लो, उस पलीद गुनाह को सामने लाओ, ढूंढो और फिर तौबा करो, देखो इंशाल्लाह मसला लोगे। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को इतना पारसा मुत्तकी अल्लाह वाला समझते हैं कि अपने आप को बुरा नहीं समझते, कुरान पाक पे शक करने लगते हैं, कुरान पाक पे शकों को शबात हम लेकर आ जाते हैं। और एक जगह आखिरी इनाम फलाहुन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में कि ज़रूर बिल ज़रूर आखरत तो आखरत दुनियावी ज़िंदगी को भी बालुत मज़ेदार बना देंगे, ज़रूर बिल ज़रूर कि तुम्हारी आखरत तो शानदार होगी होगी लेकिन दुनियावी ज़िंदगी भी मज़ेदार बना देंगे, ज़रूर बिल ज़रूर। लाम ताकीद बानून थकीला के ज़रिए जो उलमा कराम समझते हैं अरबी ग्रामर के हिसाब से कि अल्लाह ने जो लफ्ज़ फरमाया है ये भी फरमा सकते थे आखरत तो आखरत दुनियावी ज़िंदगी भी मज़ेदार बना दे, ज़रूर बिल ज़रूर का कि अल्लाह ने क्यों इतना अहतमाम किया। अल्लाह को पता था आइंदा ऐसे लोग आएंगे जिनके ईमान व यकीन में कमी होगी, शक करेंगे, मायूस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो अल्लाह हमारी तसल्ली की नहीं कह रहा है शक मत करना, ज़रूर बिल ज़रूर, ये मौलवी साहब का वादा नहीं है, इसी अल्लाह वाले का वादा नहीं है, तुम्हारे रब्बुल आलमीन पैदा करने वाले का वादा है कि ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी मज़ेदार बना देंगे इंशाअल्लाह। चलिए भाई, तो अब ये जो है आमिलों के चक्कर से निकलें, ताबीज़ बंडों के चक्कर से निकलें, और तकवा मिलेगा कहाँ से? कुरान हदीस का खुलासा, किसी अल्लाह वाले से जहाँ ताल्लुक़ कायम हो, किसी अल्लाह वाले से जिससे मुनासबत हो, फ़ायदा हो, वहाँ ताल्लुक़ कायम कर लें, इंशाल्लाह थोड़े अरसे में तकवा इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा। अल्लाह जल्ला जलाला नासिर मजरत वाले रहमत इरशाद फरमाते थे, 5 अमाल बयान कर दिए और उसका ताल्लुक़ जो है ये तकवे से है, और 5 अमाल का ताल्लुक़ फ़राइज़ और वाजिबात से, इन्हें ज़रूरी हैं बहुत ही 5 चीज़ें। तो पहले कुरान पाक पढ़ने का इत्माम करें तजवीद के साथ, और दूसरा अमल एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, और मूंछों को बिल्कुल बारीक रखें, और चारों इमामों का इजमा, किसी का इख्तलाफ नहीं है कि एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, और चावल के दाने के बराबर भी अगर एक मुट्ठी से दाढ़ी कम है तो ऐसी दाढ़ी का रखना और मुड़ाना हराम है, और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली दोस्त नहीं हो सकता। और मुझे बड़ी मुझे रखने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत की बद्दुआ दी। कौन कह रहा? रसूल अल्लाह सही बुखारी के हदीस शरीफ है। तो कुछ लोग आए, सफ़ीर थे किसी मुल्क के, उस ज़माने में उनका जो बादशाह था वो आग का पुजारी था, काफिर थे वो, सफ़ीर भेजे बादशाह ने, तो आपने उनको देख के नागवारी नफ़रत से मुंह फेर लिया। वो बड़े हैरान, उनको या रसूल हम आपसे मिलने हैं, आपने नागवारी से चेहरा उधर फेर लिया। अब उनकी दाढ़ियाँ मुड़ी हुई थी और बड़ी बड़ी मूछें थी, तो आपने उनको झट जवाब दिया फौरन, हलाक और बर्बाद हो, पहले ये बताओ कि तुमने शक्लें क्या बनाई हैं, कि दाढ़ियों को तो मुड़ाते हो और मूछों को बड़ी बड़ी रखते हो। फिर उन्होंने कहा कि हमें हमारा जो बादशाह है जो आपका पुजारी है उसने हमें कहा है कि ऐसी शक्लें बनाओ। फिर आपने इरशाद फरमाया लेकिन मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को बिल्कुल कतरवाओ। और तीन वईदें बड़ी मूछ के ऊपर आफ़ ने जो फरमाई हैं कि मुनकर नकीर जब कबर में आएंगे गुस्से की हालत में आएंगे, भाई एक तो कबर वगैरह सोचें हम लोग हैं, और उसमें मुनकर नकीर अंधेरे में घुटन वाली जगह, और फिर गुस्से में नंबर दो उसको कबर में अजाब दिया जाएगा, उसको कबर में अजाब दिया जाएगा इसको बड़ी मूछ में। बाबू साहब कहते हैं ये दाढ़ी मूछों से क्या होता है, दिल साफ होना चाहिए भाई, उससे इन बातों में क्या रखा है भाई, ये रखा तो है बता तो रहे कि कबर में अजाब मिलेगा उसे, और क्या चाहिए और क्या सुनना है, इसकी बात भी कोई बात रहती है एतराज़ करने वाली, तो अजाब कबर में। और फिर तीसरी हदीस आगे आपने इरशाद फरमाया मैं उसकी शफात नहीं करूँगा, ये बड़ी मूछ पे मसला चल रहा है खाली। अफजल दर्जा ये जैसे मेरी मूछें हैं बाज़ लोगों ने रखी हैं बारीक बिल्कुल, लेकिन ब्लेड मारना बाज़ उलमा कराम ने बिदत लिखा है, छोटी मशीन ट्रिमिंग मशीन आती है उससे ट्रिम करा लें मूछों को, तो छोटी कैंची से बिल्कुल बारीक कर लें। अगर मूछें रखने का किसी को शौक़ है, बास खवातीन को शौक़ होता है शौहरों से कहती मूछें रखें, मैं मूछ वाले बंदे को कहूँ भाई ठीक है, बीवी की भी ख्वाहिश है मूछें रख लें, लेकिन उसका जायज़ दर्जा ये है कि ऊपर का जो होंठ का जो किनारा है ये खुला रहे, होंठ का ऊपर का किनारा ये खुला रहे। अगर मूछें रखनी है होंठ के किनारे के ऊपर ऊपर रखें, अगर चंद बाल भी ऊपर के होंठ के किनारे के ऊपर आ गए तो वो बड़ी मुश्किल हुक्म में मामला आ जाएगा, तो इससे बचें। और ख़वातीन दो काम कर लें, कुरान पाक तो ख़वातीन को और मर्द दोनों की हैं, दाढ़ी और टखनों और दाढ़ी की जगह जो है ख़वातीन दो काम कर लें, कि एक तो शरीर पर्दे का अहतमाम करें, दूसरे शौहर की अतात करें, और टखनों से ऊपर पैंचे मर्द रखें। मर्दों के लिए दो फूट तो टखने खोल के रखना वाजिब है, जब हम खड़े हों चल रहे हों, खड़े हों चल रहे हों टखने खोल के रखना वाजिब है मर्दों के लिए, बैठे लेटे तो भले छुप जाए, और नमाज में तो और ज़्यादा अहतमाम करना है, वरना तो नमाजी कबूल नहीं होती। आप ने इरशाद फरमाया अगर नहीं कोई रखता टखने ऊपर पैंचों से, तो आप फरमा रहे हैं माँ असला काबई नहीं मिला इजारे फिनार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो ये वाजिब है टखने खोल के रखना, इसमें भी लोगों को शर्म आती है, मर्द हज़रा टखने खोल के रखते छुपा के रखते हैं, अरे भाई पैंट पहनी हुई है तो उसको फोल्ड करने पैंचे, या अगर शलवार पहना हुआ है तो शलवार छोटी सिलवाएँ थोड़ी, या अगर शलवार लंबी अगर है तो उसको ऊपर से फोल्ड कर लें नेफे के पास से, तो टखने वाजिब खुले हुए नज़र आने चाहिए। यूनिफॉर्म में आदमी रहे, एक मुट्ठी दाढ़ी और मूछें साफ, टखनों पर पैंचे टोपी, माशाल्लाह देख के पता चले तो बंदा मोमिन आ रहा है अफ़सलम को उम्मती। और अब ये उस पर भी एतराज़ है जी, आइए दाढ़ी टोपी वाले तो ऐसे ऐसे गंदे गुनाह करते हैं, मैं आपको दिखाऊं आइए। ओ भाई तो पुराने पाक में अल्लाह इसका भी जवाब दे रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं गुनाहों के दो रुख होते हैं, ज़ाहरी गुनाह भी छोड़ दो और बातनी गुनाह भी छोड़ दो। तो पहले अल्लाह ज़ाहिर की बात करें, जब ज़ाहिर दुरुस्त होगा तो बातिन की असलाह बाद में शुरू होगी। यहाँ लोग कुरान इस पर भी बहस है नहीं, अल्लाह के कानून को उल्टा करना चाह रहे हैं कि पहले बातिन सही होना चाहिए, फ़ायदा क्या कि आदमी दाढ़ी रख के गलत काम करे। तो पहले मैं गुनाहों को छोड़ूंगा, दाढ़ी बहुत ऊँची मुकाम की चीज़ है, बहुत मुबारक चीज़ है, पहले मैं फला फला गंदे काम करता हूँ पहले वो छोड़ूंगा फिर दाढ़ी रखूँगा, अरे मौत तक नहीं हो ऐसा। अल्लाह ने जब कह दिया मेरे महबूब की शक्ल में आ जाओ इखलास के साथ, बस मत फिक्र करो गुनाह तुम्हारे बातें सब मैं धुलवा दूंगा तुमसे, सब छुड़वा दूंगा। कुरान पाक की तरतीब पहले जाहिर की बात कर रहे हैं अल्लाह पाक, जब जाहिर बनता है तो फिर बातिन की असलाह बाद में होगी, बातिन की असलाह बाद में होती है। लोग कुछ जाहिर पे अड़े हैं, भाई जाहिर बन गया मुबारक है तो जाहिर वाले भी खुश ना हो, जाहिर बन गया तो भाई जाहिर वाले तो अपने बातिन की तरफ देखें कि रसूल अल्लाह वसलम के हुरिये में कहीं गुनाह कबीरा के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे, दाढ़ी टोपी बदनामी का जरिए तो नहीं बन रही हमारी, यानी दीन आगे बढ़ने का नाम है। और जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी तो वो भी दाढ़ी रखने का अहतमाम करें, कोई किसी को हकीर ना समझे, कोई किसी को हकीर ना समझे, हमें नहीं पता कोई। बाज़ हज़रत ताला फरमाते थे बाज़ बग़ैर दाढ़ी वाले ऐसे होते हैं जो हज़ारों दाढ़ी वालों से मुबारक और अच्छे होते हैं, अल्लाह के उनका बहुत ऊँचा मुकाम होता है क्योंकि उनके बातनी अमाल अल्लाह देख रहे होते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि किसी के दाढ़ी नहीं है तो बुरा और साढ़े दाढ़ी वाले अच्छे हैं, ये नहीं है, जन्नत जहन्नम की बात नहीं हो रही। ये बताया जा रहा है बस कि ज़ाहिर और बातिन दोनों में दुरुस्त कर रहे हैं, जिसका ज़ाहिर बन गया वो बातिन की इसलाह करे और जिसका कभी ज़ाहिर नहीं बना वो ज़ाहिर की इसलाह करे, तो आहिस्ता आहिस्ता सब अल्लाह वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। और नज़रों की हिफाज़त करें, मर्द और ख़वातीन, अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि नामहरम जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे नज़रों की हिफाज़त करें, और ख़वातीनों को भी अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि वो नाम हारी मर्दों से नज़रों की हिफाज़त करें। और रसूल अल्लाह उसने अर्शाद फरमाया लान नाज़िरा मंज़ूर अलैहि, अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनज़री करे, और अल्लाह उस पर भी लानत फरमा जो अपने आप को बदनज़री के लिए पेश करे। ये मोबाइल पे चलते फिरते रोडों पे सड़कों पे हम लोग अक्सर जो लोग औरतों लड़कियों को घूरते रहते हैं देखते रहते हैं, इनको उठा दें भाई, तो वो बाज़ारों में फिरते रहते हैं बदनज़रियाँ करते रहते हैं, कोई औरत लड़की बच्ची नहीं छोड़ते, इतना गंदा माहौल हो गया कि बस ये चलता है कि आंखें निकाल के कहीं चिपका दें अपनी आंखें, ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, कोई गुनाह है ये गुनाह, जब गुनाह रज बस जाता है तो फिर उसकी हकारत भी दिल में नहीं रहती। तो नज़रों की हिफाज़त करें, नहीं तो लानत की बद्दुआ है किसकी, इमाम लंबिया जिनकी नहीं कायनात बनी, दिल पर वहशत रहेगी, सुकून नहीं मिलेगा इस्लाम की काम से, चाहे वो मोबाइल पर हो, चाहे चलते फिरते हो, चाहे वो साली हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो चच्ची हो, चाहे मुमानी हो, चाहे खालाजात मामूजात तायाजात, ये सारी नामहारिम होती हैं, इनसे नज़रों की हिफाज़त करें। बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं अपनी सही नहीं कराते, अल्लाह पास का बड़ा फ़जल है, लेकिन हम बोलते नहीं, किसी को अंदाज़ा हो जाता है कि आ तो रहें लेकिन इस कान से बयान सुनते हैं दूसरे कान से उड़ा देते हैं, उनको जो करना है वही करना है भाई, तो क्या है ठीक है नहीं हमसे इसलाह कराओ, नहीं बताओ छुपाओ अपने मामलात को, फिर बताता रहता हूँ अल्लाह की तरफ से फिर डायरेक्ट इसलाह हो जाएगी। बैत क्यों हुए थे ऐसी हवा में, ऐसी क्या मकसद क्या था बैत होने का, बताओ तो सही कि हज़रत मैं गू खाता हूँ, मैं ये गंद करता हूँ, मैं अब साली भाभी से पर्दा नहीं नज़रों की हिफाजत नहीं करता, मैं उनके सामने आता हूँ खुल के बैठ के बातचीत मैं करता हूँ, सूफिया के सूफिया बने, सूफी के सूफी बने, अरे भाई ये तो कूफियों वाला काम है, सूफी बनो कूफी मत बनो, हज़रत फरमाते थे सूफी बनो कूफी मत बनो, बेवफाई मत दिखाओ, नज़रों की हिफाजत करें। और पांचवा अमल है कि दिल में गंदे ख्यालात ना लेकर आएँ, क्योंकि नस्बत माल्ला ताल्लुक माल्ला और अल्लाह का नूर कल्ब में पहले दाखिल होता है फिर पूरे जिस्म में उसकी मुंतकली होती है, दिल को पाक साफ रखें अल्लाह के क़ुर्ब के लिए। और पांचों आमाल की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से जहाँ मुनासबत हो वहाँ ताल्लुक कायम कर लें तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में पांचों अमाल की तौफीक हो जाएगी। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب كريم يا رب الرحمين يا الله جو کچھ بولا گیا سنا گیا بس اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ کہنے سننے میں غلطی کمی بیشی کو پہچانے رحمت سے بخت معاف فرما دے یا اللہ ہمارا مل بیٹھنے جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں ہماری اس مجلس کو ہماری بیٹھک کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ہم سب کی کامل مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی اہل ویال کی کامل مغفرت فرما قوم امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ سر جو مبارک ذکر ہوا ہے اللہ اس ذکر اپنے مبارک ذکر کی برکت سے ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما یا اللہ جس جس کے دل میں حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے جس کے ساتھ جو بھی غم تکلیف پریشانی ہے جو جس نیت کے ساتھ آئے اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے یا اللہ دنیا کے غموں سے بھی ہمیں نجات دے دے اور آخرت کے بھی غم و تکلیف سے نجات دے دے ہم سب کو عارف باللہ متقی پرہیزگار اللہ والا بنا دے یا اللہ کامل رسول اللہ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما یہود و نصارہ کے اور کافروں کے نقش قدم پہ چلنے سے ہمیں بچا لے یا اللہ یا رب کریم یا رحم الراحمین ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ یہودیوں کو اور ان کے مددگاروں کو امریکہ کو تباہ برباد کر دے صفحہ ہستی سے مٹا دے عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ تباہ و برباد کر دے یا اللہ بھی امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اللہ پاک ایران کے اوپر اللہ پاک ایران کی اور تمام امت مسلمہ کی پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو ایک اور نیک کر دے. یا اللہ تمام کفار اللہ پاک اس وقت ایک ہونے ہیں ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, لیکن ہم مسلمان امت مسلمہ کا شرازہ بکھرا ہوا ہے, سب الگ الگ ہیں. اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو ہم سب کو ایک اور نیک کر دے. یا اللہ یا رحم الرحمین, یا اللہ اسلام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے, تباہ برباد کر دے, سفر ہستی سے مٹا دے, بد کا نشان بنا دے. یا اللہ یا رحم الرحمین, یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی, کل مومنین مومنات کی, کل جنات کی, سب کی کامل مغفرت فرما, سب کی قبروں کے نور سے بھر دے. اللهم صل على محمد وعلى آله.